नमस्कार भारत, आज है 30 मई दिन मंगलवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। केरल में बछड़े को सरेआम मारने वाले कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने किया निलंबित, पार्टी बचाओ की मुद्रा में।
सब समाज में ऐसी घटनाओं से अगर पार्टी के साथ नाम जुड़ा है तो पार्टी को नुकसान होता है, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के लीडरों को कोई काम करने से पहले सोच लेना चाहिए।
चार देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे जर्मनी, पर क्या जर्मनी से बढ़ पाएगा व्यापार?
जर्मन कंपनियां जो हैं वो अभी भी चीन के मोह में कहीं ज्यादा फंसी हुई हैं। उनको लगता है कि अभी भी चीन से उनको जो आमदनी हो सकती है वो भारत से नहीं हो सकती।
कश्मीर पर बीबीसी के खास श्रृंखला के तहत सुनिएगा वहां बढ़ते तनाव पर क्या सोचते हैं कश्मीर के मासूम बच्चे। पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। केरल में केंद्र सरकार के मवेशियों के कारोबार के बारे में बनाए नियम के विरोध के दौरान एक बछड़े को मारने के मामले में कांग्रेस ने अपने 5 स्थानीय नेताओं को निलंबित कर दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर इसे एक बर्बर हरकत बताया और कहा कि इसे ना तो वो और ना ही पार्टी स्वीकार कर सकती है। इस घटना पर विवाद के बाद केरल पुलिस ने भी कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अफगानिस्तान की राजधानी बगदाद में हुए एक बम धमाके में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये धमाका सेंट्रल बगदाद के एक आइसक्रीम पार्लर के जरिए किया गया। अधिकारियों का कहना है कि धमाके के निशाने पे कराडा जिला था, जो कि शिया बहुल इलाका है, जहां सूर्यास्त के बाद लोग रमजान का रोजा खोल रहे थे। इस धमाके में 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खबरों के मुताबिक धमाके में कार बम का इस्तेमाल किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि सीरिया में किसी भी तरह के रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल खतरे के निशान को पार करने की तरह होगा, जिसका फ्रांस फौरन प्रतिरोध करेगा। राष्ट्रपति मैक्रों ने यह भी कहा कि वो सीरिया को लेकर मजबूत सहयोग चाहते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा,
Il y a bien évidemment et il y aura une coopération entre nos deux pays sur la question syrienne. Elle est indispensable et c'est d'ailleurs la décision.
सीरिया के सवाल पर दोनों देशों के बीच सहयोग रहा है और रहेगा, ये अनिवार्य है। कि इसके अलावा ये एक निर्णय है जो मैंने राष्ट्रपति पुतिन को ये प्रस्ताव देने के लिए लिया है। मैं इस विषय पर मजबूत सहयोग चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों देशों के बीच एक प्राथमिकता समान है और वो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। ये पूर्ण मौलिक प्राथमिकताओं की भी प्राथमिकता है। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने उन संक्रमण के खिलाफ जीत हासिल कर ली है जो एंटीबायोटिक के प्रतिरोधी हैं, यानी जिन पर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता, जो कि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा था। शोधकर्ताओं ने मौजूदा दवाई वैनकोमाइसिन को संशोधित किया है, जिससे उसका नया जादुई संस्करण तैयार हुआ है। वैनकोमाइसिन यूरिनरी ट्रैक और घाव के संक्रमण के लिए जिम्मेदार मामूली बैक्टीरिया को ठीक करने की क्षमता खो रही थी। इस दवाई का नया संस्करण 1000 गुना ज्यादा असरदार है और 3 तरह से हमला करता है, जिससे बीमारी के वापस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। फ्लोरिडा पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह गोल्फ स्टार टाइगर वुड्स शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किए गए थे। पाम बीच पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक वुड्स स्थानीय समयानुसार सुबह 7:18 पर गिरफ्तार किए गए थे और कुछ ही घंटों बाद उन्हें बिना जमानत के रिहा कर दिया गया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्हें तड़के सुबह 3 बजे गिरफ्तार किया गया था। 41 साल के टाइगर वुड्स हाल में हुई पीठ की सर्जरी से उभर रहे हैं। 14 चैंपियनशिप जीतने वाले वुड्स ने अपनी नंबर 1 रैंकिंग कुछ विवादों के बाद खो दी थी। जर्मनी के विदेश मंत्री सिगमर गैब्रियल ने ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वो अपने कार्यों के जरिए पश्चिम को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका का कम दूरदर्शिता वाली उनकी नीतियां यूरोपीय देशों के हितों के खिलाफ गई हैं। उन्होंने मध्य पूर्व में अमरीकी हथियारों की बिक्री का भी जिक्र किया। गैब्रियल ने कहा, अगर एक देश किसी दूसरे देश में जाता है जो कि मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करता और हथियारों के एक बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है, जब एक देश जानता है कि लोग जलवायु परिवर्तन की वजह से परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं, तब मैं कहूंगा कि पश्चिम सिकुड़ रहा है या कम से कम कमजोर तो हो ही रहा है। ये थे गैब्रियल के शब्द। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अपूर्व कृष्ण। केरल पुलिस ने बीफ फेस्टिवल के दौरान एक बछड़े की कथित तौर पर जान लेने के मामले में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में युवक कांग्रेस के 5 नेताओं को निलंबित कर दिया है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इस बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद से बात की और पूछा कि इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, ऐसे में कांग्रेस क्या इस घटना को लेकर घिरती नहीं जा रही?
लगता है कि दो हिस्सों में मीडिया बटा है। कुछ जो लोग हैं वो अपोजिशन के खिलाफ माहौल बनाते हैं और कुछ लोग हैं जो मोदी भक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे कुछ मीडिया का जो सेक्शन है उसने अपने आप को बांट लिया है, इस तरह लगता है कि काम बांट लिया है गवर्नमेंट के इस पर, और कुछ लोग अपोजिशन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। कुछ मीडिया के लोग, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, ये मीडिया को ही धन्यवाद जाता है कि इस बात को जब बीजेपी ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की और बीजेपी के सपोर्ट करने वाले कुछ मीडिया के लोगों ने इसको गौ हत्या बनाने की कोशिश की, तो मीडिया ने ही क्लियर किया कि ये गौ नहीं, ये बछड़ा था। उसको भी राहुल गांधी जी ने कंडेम किया, कांग्रेस ने कंडेम किया, यूथ कांग्रेस के वर्कर्स के खिलाफ एक्शन किया। लेकिन ये क्या अपने गोवा में भी उन्हीं की सरकार है बैन करेंगे क्या, मेघालय में उन्हीं की सरकार है वो बैन करेंगे क्या, ये नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में भी उनकी सरकार है वो बैन करेंगे क्या? इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी इस मामले में या इस तरह के मामलों को सिर्फ कैसे पोलराइज हो और कैसे समाज में बंटवारा हो और बड़ा हिंदू समाज है उसको अपने को समर्थक बता के उनको बेवकूफ बना के वोट कैसे लिया जाए, इसी के लिए उनको भावनात्मक रूप से बहका के कैसे वोट लिया जाए, इसी के फराक में रहती है।
जब आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, भले ही अब आपने उन्हें निकाल दिया है, लेकिन बीफ फेस्टिवल जैसा कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो क्या उसमें किसी बड़े नेता की सहमति की जरूरत नहीं होती? क्या केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ ढीली पड़ रही है कि संगठन अपने आप इस तरह के कार्यक्रम अपने हाथ में लेते हैं जहां कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के साख पर तो असर पड़ता है?
आमतौर पे जो गलत काम होगा कोई भी सेंसेबल लीडरशिप इसको परमिशन नहीं देगी। दो चार ने इंडिविजुअल किया, अभी बीजेपी के कुछ समर्थक और बजरंग दल और जो संघ परिवार के कुछ लोग हैं व्यक्तिगत रूप से पकड़े गए एंटी नेशनल काम करते हुए कोई आतंकवाद की घटना में शामिल। तो आतंकवाद की घटना में अगर बीजेपी का कोई एक आदमी या दो आदमी शामिल हो गया तो पूरी बीजेपी तो आतंकवाद की घटना के लिए हम उसको जिम्मेदार नहीं मान लेंगे और ये नहीं कहेंगे कि उसने बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछ के ये काम किया है। से अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कोई काम करता है या दो चार लोगों ने मिलकर कर लिया तो केंद्रीय नेतृत्व से नहीं लेता है।
क्या आपको लगता है इस पूरे इंसिडेंट से कांग्रेस की छवि पर कोई असर होता है?
निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं ये गलत संदेश देती हैं। सब समाज में ऐसी घटनाओं से अगर पार्टी के साथ नाम जुड़ा है तो पार्टी को नुकसान होता है। इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के लीडरों को कोई काम करने से पहले सोच लेना चाहिए।
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शकील अहमद। जाहिर है कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी और मीडिया पर सवाल उठाकर पलटवार की भी कोशिश कर रही है, लेकिन क्या इस घटना से कांग्रेस की छवि पर कोई असर पड़ सकता है? वात्सल्य राय ने कांग्रेस की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई से यही सवाल पूछा।
मुझे लगता है कि वहाँ जो केरल में कांग्रेस का जो युवा कांग्रेस के लोग वो उत्तेजित हो गए और एक उन्होंने भावुक होकर के एक गलत कदम उठाया, उससे पूरी कांग्रेस पार्टी की इमेज और उसकी भरपाई जो है वो जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तमाम राज्यों में बहुत उसका कांग्रेस को एक तरीके से राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
एक पार्टी बीफ फेस्टिवल करती है और उसके वीडियो जब तक नहीं आ जाते, कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता, कोई जानकारी नहीं मिलती, और ये वीडियो आने के भी काफ़ी देर के बाद एक ट्वीट आता है राहुल गांधी की तरफ से। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस के नेतृत्व की पकड़ ढीली पड़ रही है?
बात वहाँ ये हुई कि एक भाजपा की ये जो एक जो केंद्र सरकार का कानून आया है और उसके खिलाफ जो है एक रिएक्शन में एक बहुत ही एक पुहर तरीके से एक ये हत्या की गई और उसका वीडियो बनाया गया और एक तरीके का उसको एक प्रोटेस्ट करने का हो गया। ये तो इवेंट के बाद ही कांग्रेस लीडरशिप उस पर एक स्टैंड ले सकती थी और उसका राजनीतिक आकलन हुआ। गौ हत्या को लेकर इस देश में एक कानून की जरूरत महसूस होने लगी है, क्योंकि जो हमारे जो प्रचार प्रसार के माध्यम है उतनी तेजी से बातें फैल जाती है। एक देश में एक बहुत बड़ा तबका है जिसकी बहुत उसकी संवेदनाएं, धार्मिक आस्था और संवेदनाएं जुड़ी हुई है, और जहां आप कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो जहां सरकार ने इजाजत दे रखी है तो वहां के ऊपर वो प्रथम दृष्टि में कोई गैर कानूनी चीज नहीं लगती, लेकिन इसमें एक राष्ट्रीय कानून की जरूरत है।
लेकिन इस मुद्दे को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में कांग्रेस को क्या बैकफुट पर लेने की कोशिश में है और उसमें कामयाब भी हो रही है?
भावनात्मक मुद्दों पर आप देखिए, चाहे वो अयोध्या बाबरी मस्जिद का मामला हो या दूसरे मामले हो, उस पर हमेशा शाबानों की बात हो, कांग्रेस हमेशा ऐसे मामलों पर एक उसको प्राइस उसको पे करना पड़ता, बैकफुट हो जाते, क्योंकि देखिए कोई एक आस्था के आधार पे या किसी क्षेत्रीय आधार पर उसकी कोई राष्ट्रीय स्तर पे पकड़ नहीं है। तमाम जगह पर लोग उसके उसके मानने वाले हैं, उसके फॉलोअर हैं। जहां पर एक कानून नहीं है और उसमें लोगों में खान पान के मामले में अलग अलग तरह की सोच है, उन सोच को पे जब ऐसी बातें होती हैं, और भाजपा देखिए अभी तक जो केरला में राजनीतिक स्थिति है वहाँ उस तरह की वो स्टेक होल्डर नहीं है, उसका वहाँ राजनीतिक अस्तित्व जो है ज्यादा मजबूत नहीं है, जनाधार नहीं है, तो वो ऐसा स्टैंड ले सकते हैं जिसमें हो सकता है कि केरल में उनको बहुत ज्यादा कामयाबी ना मिले, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में और एक पूरी परसेप्शन एक कांग्रेस को पीछे ढकेलने में और उसकी लीडरशिप को जो है रक्षात्मक मुद्रा में लाने में वो बड़ी हद तक कामयाब होती है। तो ये बातें हैं जो राजनीति में राहुल गांधी को थोड़ा, जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा कि आज घंटों मिनटों में कौन सी बात कहां पहुंच जाती है और उसको किस मतलब में लिया जा सकता है और उस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होना चाहिए, इन सब के बारे में उन्हें दूरगामी एक रणनीति बनानी होगी। ये कहना कि उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं करा या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन सब चीजों से जनता को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, और नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी पार्टी जो है बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है बात को कहने का और उसको अपने ढंग से पेश करने की उनको कला आती है, और कांग्रेस इसमें बहुत पीछे है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई। इस बीच इस विवाद पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने मवेशियों के व्यापार पर कानून बनाकर राज्यों के अधिकारों का हनन किया है। इस बारे में अगर आप और विस्तार से पढ़ना चाहें तो आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
चार देशों की यात्रा पर गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले पड़ाव में जर्मनी पहुंच गए हैं। मोदी और जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के बीच कल डिनर पर मुलाकात हुई। ये दोनों नेता आज फिर मिलेंगे। भारत और जर्मनी के बीच कई समझौते भी हो सकते हैं। व्यापार की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है भारत जर्मनी के लिए, ये समझने के लिए वात्सल्य राय ने जर्मनी में वरिष्ठ पत्रकार राम यादव से बात की।
व्यापार के क्षेत्र में भारत तो बहुत आगे जाना चाहेगा या जर्मनी भी बहुत आगे जाना चाहेगा, लेकिन मैं उसकी बहुत ज़्यादा संभावना देखता नहीं, क्योंकि भारत और जर्मनी के बीच आज से करीब 6-7 साल पहले ही यह तय हुआ था कि द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब यूरो पहुंच जाना चाहिए, जबकि स्थिति यह है कि 2016 तक वो केवल 17 अरब यूरो पहुँच पाया, जिसमें से 10 अरब यूरो तो जर्मनी का निर्यात है भारत की तरफ और 7 अरब यूरो है भारत का निर्यात जर्मनी की तरफ, यानी भारत 3 अरब यूरो घाटे में है। जहां तक निवेश की बात है, भारत में जितना विदेशी निवेश होता है उसमें जर्मनी का हिस्सा मुश्किल से 4% के ही बराबर है, तो ये तो कोई बहुत अधिक नहीं हुआ। इसमें समस्या ये है कि जर्मनी की सरकार तो अपनी तरफ से कोई निवेश करती नहीं है, जर्मन कंपनियों को निवेश करना होता है तो सरकार उनको बाध्य नहीं कर सकती है, सरकार सिर्फ सलाह दे सकती है, और जर्मन कंपनियां जो हैं वो अभी भी चीन के मोह में कहीं ज़्यादा फंसी हुई हैं। उनको लगता है कि अभी भी चीन से उनको जो लाभ हो सकता है, जो आमदनी हो सकती है, वो भारत से नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए भारत में सिर्फ 1800 जर्मन कंपनियां इस समय काम कर रही हैं, जबकि चीन में 5000 हैं, और चीन के साथ जर्मनी का व्यापार भी करीब 100 अरब यूरो के बराबर है और भारत के साथ 17 अरब है, तो अभी भी चीन का इसमें काफी वर्चस्व है।
एक मुद्दा है सुरक्षा का, क्या इस दिशा में भी कुछ बात होनी है, कुछ समझौते होने हैं?
सैन्य सुरक्षा वाली बात है या सैनिक साज सामान की बात है, उस बारे में जर्मनी भारत के साथ समझौता चाहता है, क्योंकि इस बीच भारत का बजट, रक्षा बजट संसार में पांचवा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। भारत बड़ी मात्रा में विदेशों से सैनिक सामान इत्यादि आयात कर रहा है, खरीद रहा है, और जर्मनी भी एक प्रमुख निर्माता है सैनिक हार्डवेयर का। लेकिन जर्मनी में दिक्कत यह है कि यहाँ की संसद को आमतौर पर इस तरह के समझौतों का अनुमोदन करना होता है, और आमतौर पर सरकार ऐसे देशों को भारी हथियार वगैरह नहीं बेच सकती जो किसी भी झगड़े में या युद्ध की स्थिति में या किसी भी गंभीर विवाद में है। और भारत के साथ स्थिति यह है कि पाकिस्तान के साथ उसका काफी लंबा विवाद है, तो सरकार अगर चाहे भी तो उसे संसद का हमेशा अनुमोदन नहीं मिल पाएगा, इसलिए इस दिशा में बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा।
जर्मनी से ये थे वरिष्ठ पत्रकार राम यादव। और आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के अखबारों की बड़ी खबरों पर। तृप्ति श्रीवास्तव अखबारों के साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। तृप्ति, क्या है आज के अखबार?
जी अपूर्व जी, जो कि पूरे देश भर में जो खबर रही है, हिंदू ने, द हिंदू ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा है कि उनकी सरकार उस केंद्रीय अधिसूचना का पालन नहीं करेगी जिसके अंतर्गत पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत बाजारों से खरीदे गए जानवरों को मारने पर प्रतिबंध की बात की गई है, और 26 मई को जारी की गई अधिसूचना पर ये उन्होंने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। वहीं द एशियन एज ने लिखा है कि पर्यटन के लिए अमेरिका जाने वाले भारतीयों के वीजा में पिछले साल के मुकाबले 28% की बढ़त देखी गई है, और वहीं पाकिस्तान से जो अमेरिका जाते हैं उन लोगों में 40% तक की ये संख्या घटी है। और अखबार ने यह भी लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के शासन में पाकिस्तानियों को जारी किए गए वीजा में यह गिरावट तब है जब अमरीकी प्रशासन के ट्रैवल बैन देशों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस लिखा है कि आज यानी मंगलवार को देश भर के 9 लाख केमिस्ट हड़ताल पर रहेंगे। अखबार ने लिखा है कि देश भर में दवाओं की बिक्री पर कड़े नियमों और खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन को कम करने के विरोध में यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई है। हालांकि अस्पतालों के अंदर और बाहर जो इमरजेंसी की सेवाएं हैं या दवा की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि केंद्र ने यह साफ किया कि भारत पाकिस्तान के बीच फिलहाल द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज का आयोजन नहीं हो सकता। सोमवार को खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद नहीं रुकता दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंध बहाल नहीं होंगे। और गोयल ने यह भी कहा है कि बीसीसीआई को सरकार से बात करने के बाद ही पाकिस्तान को मैच खेलने का कोई प्रस्ताव देना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि 2012 के बाद से कोई भी द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज दोनों देशों के बीच में नहीं हुई है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी है जिसमें एक बीते जमाने की अदाकारा है 58 साल की गीता कपूर, उनको उनके कोरियोग्राफर बेटा जो है अस्पताल में छोड़कर एक महीने पहले चला गया जिसका पता नहीं लग पाया, और फिर फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उनकी सुध ली और वो काफी रोकर अपने बच्चों को याद कर रही हैं।
कुछ लग रहा है कि ये पाकीज़ा फिल्म में,
जी हाँ, इन्होंने पाकीज़ा और रजिया सुल्तान जैसे फिल्मों में चरित्र अभिनेत्री के तौर पर काम किया है।
खबर है ये कि उनके बच्चे चले गए उनको छोड़कर। तो बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति श्रीवास्तव आपका अखबारों की समीक्षा के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, बीबीसी हिंदी।
बीबीसी ने कश्मीर पर एक खास सीरीज शुरू की है, कश्मीर के लोगों की जुबानी हम बता रहे हैं कश्मीर की अनसुनी और अनदेखी कहानी। इस कहानी का एक पहलू जो दिलों को छू लेता है वो है कश्मीर के बच्चों का हाल। तनाव, विरोध और प्रदर्शनों का शोर, पत्थरबाजियों और गोलियों का निशाना बनते लोगों का मासूमों के मन पर कैसा असर होता है? बंद के साए में जब बच्चे स्कूल और खेल के मैदानों से दूर सिर्फ घरों में कैद होकर रह जाते हैं तो वे क्या सोचते हैं? आप भी सुनिए एक कश्मीरी बच्चे के दिल में उमड़ती घुमड़ती बातें सिया की जुबानी।
कश्मीर बहुत सुंदर है, बिल्कुल जन्नत की तरह। यहाँ बहुत सुंदर पहाड़ और नदियाँ हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से खेल नहीं सकते, स्कूल जाना भी मुश्किल है। चला रहे थे, मैं भागकर अंदर आ गया। बाद में पता चला कि एक लड़के को गोली लगी और वो मर गया। वो एजाज था, मेरा पड़ोसी। उस समय हमारे स्कूल 7 महीने बंद रहे। जो लोग आर्मी से नाराज थे वे हमारे सारे रास्ते रोक देते थे और हमें स्कूल नहीं जाने देते थे। उस दौरान मैं जब भी कोई शोर सुनता तो घर के कोने में छिप जाता। घर में पढ़ता और घर में ही खेलता। मैंने 7 महीनों तक अपने दोस्तों का चेहरा तक नहीं देखा। उनके साथ क्रिकेट खेलने का बहुत मन करता था। कई दिन हो चुके हैं लेकिन मुझे अब भी एजाज की याद आती है। मैं ये सब भूलना चाहता हूँ लेकिन नहीं भूल पाता, इसलिए मैंने आर्ट स्कूल में ये स्केच बनाया। ये कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं और ये बच्चों के लिए स्कूल। एक तरफ सेना के जवान हैं और उनके सामने आज़ादी मांगने वाले लोग जो उन पर पत्थर फेंकते हैं। जब फौजी गोलियाँ चलाते हैं तो एक स्कूली बच्चा मर जाता है और उसका दोस्त अकेला हो जाता है। मुझे लगता है कि पत्थर फेंकने वाले और आर्मी दोनों गलत हैं। उनकी वजह से बच्चों पर असर हो रहा है, लेकिन आर्मी को भी पत्थर का जवाब गोली से नहीं देना चाहिए ना?
कश्मीर पर बीबीसी हिंदी की विशेष श्रृंखला। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मर्दान शहर में पिछले महीने एक छात्र को उसके ही साथियों ने पीटा और फिर गोली मार दी। अब्दुल वली खान विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे 21 साल के मशाल खान पर आरोप था कि उन्होंने फेसबुक पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की थीं, जो कि मारने वालों की नज़र में ईश निंदा थी। छात्र की मौत के बाद हंगामा हुआ और यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। कुछ दिन पहले भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच यूनिवर्सिटी दोबारा खोली गई। ऐसे ही वक्त पाकिस्तान में पत्रकार उरूज जाफरी मशाल खान के घर पहुंची। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
40 दिन तो गुजर गए हैं लेकिन मशाल खान की कब्र पे आए दिन रोजाना लोग पाकिस्तान के कोने कोने से आते हैं और फातिहा पढ़ते हैं और अपने ट्रिब्यूट्स पेश करते हैं। इस वक्त भी दोपहर के तकरीबन 3 बजने वाले हैं लेकिन मेरे सामने गिलगित से आए हुए काफी सारे लोग मौजूद हैं जो मशाल खान की कब्र पे अपने ट्रिब्यूट पेश करने आए हैं। मशाल का मानना था कि ज्ञान या इल्म का मकसद अपनी जिंदगी को समाज की बारीकियों से जोड़कर देखना और समझना है। मशाल के पिता इकबाल खान, जो खुद भी एक कवि और कॉमरेड हैं, अपने बेटे मशाल के बारे में मुझे बताने लगे कि वो लिटरेचर, फिलोसफी, ज्योग्राफी और रिलीजन पर बात किया करता था और इसी से जुड़ी किताबें पढ़ता और अक्सर बहस भी करता, लेकिन उनका मानना था कि वो लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं था।
सुलझू इंसान था और दरवेश सिपत था, सूफी था, बर्दाश्त वाला आदमी था, सब्र वाला आदमी था, अमन का बहुत अलम बरदार था। वो अपनी उम्र से बहुत बड़ा था, मतलब ये जेन में बहुत उम्र कम था और उसका ये बात भी है कि उसका सिक्स सेंस जो है ना वो बहुत बड़ा तेज था।
ऐसा लगता है कि सिक्स सेंस तेज होने की वजह से ही मशाल ने एक नज़म या कविता मैं लापता हूँ भी लिखी थी। मिर्जा गालिब और पश्तो के शायर रहमान बाबा को पढ़ने वाला मशाल अपने अंजाम से शायद वाकिफ था। अपनी कविता मैं लापता हो गया हूँ में लिखता है, मैं लापता हो गया हूँ, कई हफ्ते हो गए हैं, पुलिस रिपोर्ट लिखवाए, तब से रोज थाने जाता हूँ। हवालदार तसल्ली देता है किसी न किसी दिन तुम मिल ही जाओगे, बेहोश
کسی سڑک کے کنارے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کے مرنے پر موم بتیاں نہیں جلاتے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ آنکھ کا تارا لاپتہ ہو جائے تو روشنی کہاں سے لائیں۔ مشل کی اس کویتا میں بہت کچھ چھپا ہے۔ مشل کی دو چھوٹی بہنیں اپنے بھائی کو نہ صرف یاد کرتی ہیں بلکہ انہوں نے اپنے جیون کو اسی کے مشن کے حوالے کر دیا ہے۔ مشل کی بہنوں استوریا اور صبا خان کا ماننا تھا کہ وہ نہ صرف ان کے بھائی تھے بڑے بلکہ ان کے دوست، ان کے استاد تھے۔
اب جب وہ نہیں ہے تو اس کے بغیر زندگی اس مقام پر ہے کہ ہم یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں۔ میں خود جب سوتی ہوں رات کو تو اس کی تصاویر سے باتیں کرتی ہوں کہ مشال خان ادھر تھا، اب کہاں ہے۔ لیکن جو ہمت، جو حوصلہ، جو مشن اس نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے بارے میں میں یہی کہوں گی کہ ہم اس کے مشن کو آگے چلائیں گے انڈر دا فلیگ آف مشال مشن۔
میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ میں ان کے لیے بیان کر سکوں کہ وہ مجھے کیسے یاد آتے۔ جب میں صبح اٹھتی ہوں رات کو سونے تک میرے ذہن میں ایک ہی بات ہوتا ہے، مشال۔ اور رات میں جب میں آدھی رات میں جاگ جاتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک ہی بات آ جاتی ہے، مشال۔
مشل سے بڑا ایک بھائی احمل خان بھی ہے جو سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے میڈیا پر کچھ زیادہ ریکارڈ کرانے میں ساودھان تو ہیں، مگر احمل کا یہ بھی ماننا ہے کہ مشل ان کا پہلا دوست تھا جو کتابیں اور گیان کا دیوانہ تھا اور صوفی میوزک سنا کرتا تھا۔
جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے،
مشل پر پورا پاکستان بات کر رہا ہے، مگر ایک ماں کے دل پر کیا بیتی، مشل کی ماں گلزار بی بی کہتی ہیں۔
او زب اغا تا دیر زیادت خوشحالی دم اغا چی معشومو نو اغا دم را خبا چی او چی اغا با ما تا دک خبا۔
وہ جب بچہ تھا تو مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ امی مجھے تم اسکول میں کب داخل کرواؤ گی، مجھے اسکول کا بیگ دلواؤ، مجھے کتابیں دلاؤ کہ میں اسکول جانا شروع کروں۔ علم کا اسے بہت شوق تھا، سبق کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنی تعلیم شوق سے کی، لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑتا تھا۔ اس یونیورسٹی نے میرے بچے کو ہاتھ اس کے توڑ پھوڑ دیے، اس کا سر، اس کا قیمتی دماغ جس میں اتنا علم بھرا ہوا تھا، وہ سب خراب کر دیا۔ جب وہ یونیورسٹی سے آتا تھا اور اتنی دلچسپ باتیں کرتا تھا، یہ ایوارڈ لیے ہوئے ہوتے تھے، وہ الفاظ کا جادوگر تھا۔ جب یہ جا رہا تھا تو میں دروازہ کھولے کھڑی آہستہ آہستہ آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ جب یہ گلی کے اینڈ پر پہنچا تو سر اٹھا کے جیسے بالکل سلوٹ کیا اور چلا گیا۔ مجھے غم اس ظلم کا ہے جو اس پر ہوا، اگر کوئی گولی مار دیتے تو چلو موت اس کے نصیب میں لکھی تھی، مار پیٹ ہوتی تب بھی ٹھیک تھا، یہ تو پختون نے پختون کے ساتھ کیا، تو مجھے کسی سے گلا نہیں، پختونوں سے گلا ہے۔ مجھے اس ملک سے گلا ہے کہ اس نے اتنے قیمتی بچے کو کیوں ضائع ہونے دیا۔
مشل خان کی موت پر عروج جعفری کی رپورٹ۔ اور اب کھیل سماچار۔
بی بی سی کھیل سماچار کے ساتھ میں ہوں ویبھو دیوان۔ کرکٹ میں 1 جون سے شروع ہونے والی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے آج دو آخری ابھیاس میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا نیوزی لینڈ کا سری لنکا کے ساتھ ہوگا برمنگھم میں، اور دوسرا بھارت کا بنگلہ دیش کے ساتھ۔ وہیں بنگلہ دیش اپنا پہلا ابھیاس میچ پاکستان سے صرف 2 وکٹوں سے ہارا، یہ کافی رومانچک مقابلہ رہا۔ اب بات ٹینس کی، جہاں چل رہا ہے فرینچ اوپن، اور کل وشو نمبر 2 کھلاڑی نوواک جوکووچ نے اس ٹورنامنٹ میں جیت سے شروعات کی۔ انہوں نے پہلے دور میں اسپین کے مارسل گرنولرز کو سیدھے سیٹوں میں 6-3، 6-4، 6-2 سے ہرایا۔ ساتھ ہی کل اسپین کے رافائل نڈال، جو وشو نمبر 4 کھلاڑی ہیں، انہوں نے فرانس کے بنوئت پیارے کو 1-6، 4-6، 1-6 سے ہرا کر راؤنڈ 2 میں جگہ بنائی ہے۔ فرینچ اوپن میں وشو نمبر 1 مہیلا کھلاڑی جرمنی کی انجلیک کربر پہلے مقابلے میں ہار کے باہر ہوئی۔ انہوں نے اپنا مقابلہ سیدھے سیٹوں میں 6-2، 6-2 سے رشیا کی اکترینا مکروا سے ہارا۔ اب بات آج سے بینکاک میں شروع ہونے والے تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کی، جہاں پر بھارتیہ بیڈمنٹن کھلاڑی سائنا نہوال اور پرش کھلاڑی پرنیت پر نظر رہے گی۔ اب بات ہاکی کی، جہاں بھارتیہ ہاکی ٹیم 1 جون سے جرمنی میں شروع ہونے والے 3 دیشوں کے آمنترن ٹورنامنٹ کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ منپریت سنگھ بھارتی ٹیم کے کپتان رہیں گے۔ جرمنی میں ہونے والے اس ٹورنامنٹ میں بھارتی ٹیم جرمنی اور بیلجیم کے خلاف 2 میچ کھیلے گی۔ کھیل سماچار میں فی الحال اتنا ہی،
اور اب مکھیہ سماچار۔
بی بی سی سماچار۔ افغانستان کی راجدھانی بغداد میں ہوئے ایک بم دھماکے میں 10 لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ اس دھماکے میں 70 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں۔ دھماکے میں کار بم کا استعمال کیا گیا تھا۔ فرانس کے راشٹرپتی ایمینول میکرون نے روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن سے کہا کہ سیریا میں کسی بھی طرح کے رسائنک ہتھیاروں کا استعمال خطرے کے نشان کو پار کرنے کی طرح ہوگا، جس کا فرانس فوراً پرتیروت کرے گا۔ امریکہ کے ویگیانکوں نے ایک خاص اینٹی بایوٹکس ایجاد کی ہے جو کہ اینٹی بایوٹک کے پرتیرودھی ہیں، جن پہ اثر نہیں ہوتا ان پر اچھا اثر کرے گی۔ بی بی سی سماچار۔
دھماکہ عراق کی راجدھانی بغداد میں ہوا، جہاں 10 لوگ مارے گئے۔ تو سبھا اب یہیں سماپت ہوتی ہے۔ آج راجیش چوہان نے سہیوگ دیا، اپورو کرشن کنورتی دیں، نمسکار۔